आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी का हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। आपकी क्लास का विषय है अंतमते सुगति। बाबा की मुरलियां में हमेशा आता है कि बच्चे अंतमते सुगति कैसे हो, तो कैसे होनी चाहिए इस विषय पर आप बहुत सुंदर प्रकाश डालेंगे। आप 1962 में इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, लौकिक पढ़ाई में इंजीनियरिंग में मास्टर्स और अधिक शिक्षा पूरी कर आप 28 वर्षों तक ONGC में कार्यरत रहे। बिहार, आसाम और गुजरात के अनेक राज्योग सेवा केंद्रों की शुरुआत करने में आप जुड़े थे। आप 1996 में सेवाओं में संपूर्ण रीति से समर्पित हुए। वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट एवं इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेशन भी हैं। आप कुशल वक्ता एवं ट्रेनर भी हैं। देश विदेश में विभिन्न विषयों पर ज्ञान के रहस्यों को सहज कर आपने समझाया। आपने ज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर 5 किताबें भी लिखी, जैसे स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड इत्यादि। विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से आपको पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उदाहरण के तौर पर 1992 में भारत नेपाल पर्यावरण कंपेजिन में के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की ओर से पर्यावरण श्री इस अवार्ड से भी आपको पुरस्कृत किया गया। विशेष बात आपकी ये है कि ब्रह्मा बाबा की जब कर्मातीत स्थिति हो रही थी 18 जनवरी 1969 को, उस समय आप वहीं थे और आपने ब्रह्मा बाप की कर्मातीत स्थिति को अपनी आंखों से देखा। आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी,
बाप दादा, हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए रोज नई नई बातें, ज्ञान की धारणाओं की नए नए रूपों से देते हैं, और हम सभी का लक्ष्य है कि हम सब की इच्छा है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, विजय माला का मणका बने। और जैसा बाबा ने कहा है, साथ साथ ही बाबा के चलना है, साथ साथ ही आना है, राज्य करना है। इसलिए हम सब का पुरुषार्थ उस एक ही दिशा में चल रहा है। कोई चाहे कितने भी पुराने से पुराने हो या नए से नए भी हो, सब एक ही लक्ष्य रखते हैं, और हरेक का ये इच्छा रहती है, जैसा आज का विषय है, अंतमते सोगते। हम सबका पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हम आत्माएं इस देह को त्याग करेंगी और अंत में हमारी जो भी स्थिति होगी उस अनुसार ही हमारी आगे की संपूर्ण गति होगी। इसीलिए हम सब का पुरुषार्थ, चाहे किसी का पुरुषार्थ कुछ दिनों का है, कुछ वर्षों का है, 50 साल का है या 75, 76, 77 साल का भी है, सबका पुरुषार्थ उस एक क्षण के लिए हो रहा है कि जब हम देह को त्यागें, उस समय हमें और कोई भी याद न हो, न देह, न देह के पदार्थ, न संबंध, कुछ भी नहीं, बस एक बाबा और हम, बस बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। इसलिए उस अंतिम क्षण में, अंतिम क्षणों में हमारी क्या मानसिक स्थिति रहे, उस पर सारा आगे का दारोमदार है। लौकिक गवर्नमेंट में भी जब नौकरी करते हैं, कोई जॉब होता है, हर एक को कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है, वो जॉब छोड़ना पड़ता है। तो जब व्यक्ति उस सर्विस को छोड़ के जाता है तो आगे उसे जो भी धन मिलता है उस सब का आधार क्या होता है, गवर्नमेंट में बोलते हैं जॉब में जो भी लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी कि अंतिम जो भी उसने तनख्वाह सैलरी ली है उस पर ही आगे की सारी कैलकुलेशन होती है। जीवन भर उसे जो कुछ पेंशन मिलती है या कोई भी बोनस मिलता है, कोई भी चीज, वो उस आधार पर ही मिलता है। तो हमारा भी अंतिम क्षणों में कैसी स्थिति रही उस पर ही आगे का सारा दारोमदार है, नए जन्म का, नई दुनिया का, पूरे कलप भर का ही आधार उसके उस पर है। ये भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कोई भी चीज का अभ्यास जो है वो मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, संपूर्ण बनाता है, अभ्यासी बनाता है, सफलता दिलाता है। इसीलिए बाबा अभी हमें कहते हैं, बच्चे ऐसा अभ्यास करते चलो, बस अंत समय में और कोई भी याद न रहे। इसीलिए गीता में भी कहा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, किसी की तरफ भी कोई भी मोह नहीं हो, लगाव नहीं हो, अटैचमेंट नहीं हो, व्यक्ति हो, वस्तु, कोई भी, सब तरफ से उपराम होके हम स्मृति में, बाबा की याद में स्थित हो जाए और उस स्थिति में ही हम शरीर छोड़ें। और ये ही वास्तव में खुशी का आधार भी है। परसों भी जो मुरली चली ना, तो लौकिक दुनिया में भी बोलते हैं भाई, किसी को विश करते हैं, मिलते हैं भाई, बी हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस कहा जाता है। स्वास्थ्य भी सुख देता है, वेल्थ धन भी सुख देता है, और अल्टीमेटली इन सब के द्वारा खुशी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हैप्पीनेस वो जो है सभी चीजों का सार है। कई बार क्या होता है, हेल्थ अच्छी होती है, वेल्थ नहीं होगी तो भी हैप्पीनेस पूरी नहीं होगी, वेल्थ होगी हेल्थ नहीं होगी, या हेल्थ है वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस नहीं है। तो इसीलिए बाबा खुशी की बात बोलता है, कि कल परसों भी बाबा ने ये बोला, तो ये खुशी का क्या आधार है जो अंत समय भी, बस जब हम ये शरीर छोड़े हैं, बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो, कोई भी बात ना हो मन में, बस वो हमारी सफलता का आधार है। तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, आज उस पर कुछ थोड़ा सा और विचार करते हैं। वर्तमान समय बाबा ने इस समय को बोला हुआ है, ये कौन सा समय है, वैसे तो संगम युग चल ही रहा है, बाबा हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, लेकिन विशेष करके ये जो वर्तमान समय चल रहा है, जो लगभग अंत का समय है, ये है संकल्प सिद्धि का समय। जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा ही वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस पर हमारा बहुत अटेंशन रहे कि हमें कोई कमजोर, दुख देने का या दुख लेने का, कोई भी अशांत ऐसा संकल्प ही ना आए, क्योंकि जो संकल्प आएगा, भगवान तो वरदान देने के लिए बैठा ही हुआ है, दे ही रहा है। लौकिक में भी बोलते थे, भक्त की कोई मनोकामना होती थी, इच्छा होती थी, भक्त बस अपनी उस इच्छा को ईश्वर के सम्मुख रखता था, भगवान के मुंह से क्या निकलता था, बस एक ही शब्द, तथास्तु, बस, और भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती थी। इस समय का ही गायन है वो। इस समय हमारे मन में, संकल्प में जो भी इच्छाएं होती हैं, वो भगवान बंधा हुआ है पूरी करने के लिए। इसीलिए ये देखते चलना है कि कोई भी कमजोर अशुद्ध ऐसा कोई भी संकल्प या इच्छा न हो, क्योंकि वो भी अगर पूरी हो गई तो हमारा ही नुकसान है। इसीलिए एक तो हमारे मन में सदैव बहुत पावरफुल शक्तिशाली पॉजिटिव संकल्प ही चलते रहें हम सबका। हाँ, बाबा ने ये बताया है कौन से संकल्प चले, सदा विजयी भाव के, सफलता के। बाबा ने जो बोला है विजयी, विजय आपका कौन सा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। तो बस सदा यही, मैं बाबा मैं आपके वो कलप पहले वाली वही विजयी आत्मा हूँ, कलप पहले भी मैं माला का मणका बनी थी, अभी भी आप हमें बना रहे हो बाबा, इसी तरह आप कलप कलप बनाते रहोगे। बस विजय का आधार यही है हमारा संकल्प। तो इसीलिए बार बार अपने अंदर जितने ये पॉजिटिव संकल्प होंगे, उतना उतना ये संकल्प की जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अर्चेतन मन में घुसते जाएंगे और हमें अंत समय में भी यही संकल्प रहेगा। और उसी अवस्था में ही अगर शरीर त्याग किया तो बस फिर तो विजय बन ही गया। तो एक तो हमारे अंदर सदा यही समय अब आपके मन में आएगा। बाबा भी कई बार कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि भाई लक्ष्मी नारायण तो एक ही बनेंगे, दो ही बनेंगे, हम कैसे बनेंगे, हम तो भाई प्रवृत्ति वाले हैं, बस सुबह क्लास कर ली या थोड़ा सेवा कर ली, बाकी तो ये हमारे जो समर्पित बहने हैं, भाई हैं, हमारी पुराने पुराने दादियां हैं, बड़े भाई हैं, ये सब ही माला के मणके बनेंगे, हम कैसे बन सकते हैं, मुश्किल है। लेकिन ये संकल्प आना ही जैसे अपने भाग्य को लकीर लगा देना है। बाबा ने एक बार मुरली में माला का रहस्य खोला था, बहुत पहले, अभी भी शायद वो मुरली और फिर रिपीट होंगी। क्या रहस्य खोला था, वैसे समय प्रति समय माला के अलग अलग रहस्य बाबा खोलते हैं, लेकिन एक मुरली में बहुत पहले बाबा ने ये खोला था, क्या कि मेरी माला की जो है कई विशेषताएं, भगवान को न्यायकारी बोलते हैं, सुप्रीम जस्टिस, सबके साथ वो न्याय करता है। कैसे करता है, मेरी जो माला है, विजय माला है, उसमें मेरे सब प्रकार के बच्चे हैं। सब प्रकार के माने पुराने से पुराने भी हैं, जो अभी 75-77 साल होगा, यज्ञ के आदि भी हैं, के भी हैं, तो यज्ञ के कुछ नए बच्चे भी हैं, तभी तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का गायन है। वो चले गए फास्ट फर्स्ट में, इतना तेज पुरुषार्थ किया, क्योंकि भगवान तो न्यायकारी है, अगर सारे ही बिल्कुल आदि रतन शुरू के ही आ गए तो ये न्याय कहाँ रहा, क्योंकि हरेक को ये लगेगा अरे हम भी अगर उस समय होते हम भी आ गए होते। तो इसने पुराने से पुराने हैं तो नए से नए भी हैं, इसमें बाबा ने कहा समर्पित बच्चे भी हैं तो प्रवृत्ति वाले भी हैं, इसमें कुमारियां हैं तो अधर कुमारी भी हैं, कुमार हैं अधर कुमार भी हैं, भारतवासी हैं तो विदेशी भी हैं। सब प्रकार के, भले एक दो अलग अलग कैटेगरी के हों, भले ही मेजोरिटी चाहे नेचुरली उन आदि रत्नों की होगी, लेकिन हर प्रकार के बच्चे हैं, ये ही माला की सबसे बड़ी विशेषता है। गवर्नमेंट में भी जैसे जॉब होता है, कोटा होता है ना, भाई ये सीट जो है जॉब की, ये शेड्यूल कास्ट की है, ये शेड्यूल ट्राइब की है, बैकवर्ड क्लास की है, उस इस पर्टिकुलर कैटेगरी की है, अलग अलग, भले एक दो कुछ भी कोटा, लेकिन रिजर्व जो कोटा होता है वो उन्हीं से ही भरता है। अगर वो जो कोटा है जनरल कैटेगरी वाला, बहुत उससे ज्यादा भी अगर होशियार होंगे तो भी वो उस कोटे को भर नहीं सकते। तो इसलिए जब सब प्रकार के बच्चे हैं, तो अगर मैं मानो प्रवृत्ति वाला हूं, अधर कुमार हूं या अधर कुमारी हूं, माला में सीट है, रिजर्व है, बस मेरे लिए तो उतना ही पुरुषार्थ करना है, मेरा कंपटीशन तो दूसरे प्रवृत्ति वालों से ही, अधर कुमार कुमारियों से। तो इस रीति से हम सदा अपने को विजयी रतन के रूप में देखें, माला के मणके के रूप में विजुअलाइज करते रहें, और जितना जितना ये विजुअलाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे, मैं वही कलप पहले वाली बाबा आपकी विजयी आत्मा, और जितना जितना ये हमारे मन के अंदर बार 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 चलता रहेगा, बस उतना उतना परिस्थितियां भी जैसे अपने आप बदलती जाएंगी। जैसे बाबा ने परसों भी मुरली में बोला ना, दिल से बोला, बस मेरा बाबा बाबा मेरा बाबा, बस दिल से कहा, बाबा बंधा हुआ है और परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगे। जो कहानियों में भी है, महाभारत रामायण उन सब में, वो सब हमारी ही कहानियां हैं। वो भी सुना होगा ना, अर्जुन का भी, क्या सुना है अर्जुन का, कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसको कौरव सेना ने और विशेष जयद्रथ ने घेर करके मार दिया। अर्जुन तक जब समाचार पहुंचा, बस व्याकुल हो गया बहुत, और उसने आवेश में आके संकल्प ले लिया कि कल सूर्यास्त तक मैं उसको मार दूंगा, जयद्रथ को अगर नहीं मार सका तो खुद अपने प्राण त्याग दूंगा। अब संकल्प तो अर्जुन ने लिया, लेकिन चिंता भगवान को ही, कैसे मैं इसका ये संकल्प पूरा करूं, बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है, क्योंकि जब कौरव सेना को भी पता चला तो उन्होंने भी ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अगले दिन जब युद्ध हुआ तो अर्जुन का एक भी तीर जयद्रथ तक नहीं पहुंच रहा था, उसके मारने की बात तो दूर रही। बहुत कोशिश करी उसने, सुबह से युद्ध करना शुरू किया, दोपहर हुई, तीसरा पहर हुआ, बस कोई भी नहीं हो रहा था। तो फिर बाबा क्या बोलता है, जैसे बाबा ने परसों बोला, क्या किया, महाभारत में क्या कथा आती है कि परिस्थितियां बदल दी भगवान ने। क्या परिस्थिति बदली, कि टेम्परेरी सूरज को ढक दिया, सूरज के आगे बादल वगैरह आ गए, और सभी कौरव पांडव सेना ने सोचा कि ये तो सूर्यास्त हो गया, सब अपना रथ वगैरह छोड़ के आ गए, कौरव सेना भी, अर्जुन अब तुमने ये व्रत लिया था, सूर्यास्त हो गया, अब तुम अपने प्राण त्यागो। अर्जुन भी निराश होके अपना गांडीव रखा, रथ से उतर के बस मृत्यु को वरने की तैयारी करने लगा। फिर क्या हुआ, वही परिस्थितियां फिर से ओरिजिनल। अब कहते हैं जैसा महाभारत वगैरह में, वो तो श्री कृष्ण यानी कि वो तो भगवान मानते ही है, भगवान चाहते तो जयद्रथ को मार देते, गला काट देते, सुदर्शन चक्र से कितनी देर लगती है, लेकिन नहीं। बाबा भी कहता है जो करेगा सो पाएगा, अगर भगवान करेगा तो भगवान को मिलेगा, इसलिए पुरुषार्थ हमें ही करना है। बाकी जितना पुरुषार्थ भगवान बंधा हुआ है, अगर हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में सही स्पीड से होगा, भगवान बंधा हुआ है हमें सफलता दिलाने, लेकिन पहला कदम हमारा और हजार कदम बाप के। तो फिर परिस्थितियां बदल दी, फिर सूरज निकल आया और सब एकदम देखने लगे ये क्या हुआ। और तब जैसा कहा गया है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब ये तुम्हारा गांडीव है धनुष और ये सामने जयद्रथ, अब तुम अपना संकल्प पूरा करो। तो परिस्थितियां बदलने के लिए ही इस समय बाबा आया हुआ है। बहुत विकट परिस्थितियां भी हो, चाहे लगे कि ये कैसे, ये तो हमारी हार है, लेकिन वो हार नहीं है, भगवान के हार का, गले का हार बनने का वो साधन है, और उसके अंदर जीत समाई हुई है। इसीलिए कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, उस विपरीत परिस्थिति से हम निराश बिल्कुल ना हो, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। बड़ा अच्छा इसी के लिए ना कहा है किसी ने, बाबा भी कहता है ना, बस ऐसा खुशबूदार फूल बनो, बस हर एक को फूल प्रिय होता है। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, कोई भी परिस्थिति हो, हर एक में हम अपने को विजयी बन के देखें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है यही कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीवन में क्योंकि ये प्रकृति का ही नियम है, हार जीत दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ, ये नियम है प्रकृति का। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये जितना होगा ये होगा, लेकिन हर परिस्थिति में हम अपने को विजयी महसूस करें, ये वास्तव में सच्ची जिंदगी है, वो ही हमें सच्चा फूल बनाती है। देखो हमारी सबकी यात्रा कौन से फूल से शुरू होती है, जब ज्ञान में आते हैं पहले दिन बहने समझाती हैं, सप्ताह कोर्स होता है, फिर बहने किस फूल का उदाहरण देती हैं, अब आपको ऐसा बन के रहना है, कौन सा फूल, कमल का फूल। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रहना इस संसार में ही है, लेकिन कमल कीचड़ में होता है, कीचड़ से न्यारा, तो कमल के फूल से हमारी ब्राह्मण जीवन की यात्रा शुरू होती है, और अंतिम फूल जो बाबा ने कहा गुलाब का फूल। क्या विशेषता होती है गुलाब में, खुशबू होती है, वो सब तो है, लेकिन गुलाब के फूल में सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है, उसमें सब पंखड़ी सब इंडिपेंडेंट होती हैं, और सबका कनेक्शन बीच में जो वो पेडल होता है उसके साथ ही वो जुड़ी रहती हैं। और जब गुलाब का फूल पूरा खिल के तैयार हो जाता है पूरा, तो इतना नाजुक वो होता है, थोड़ा सा झटको जरा सा फट से पंखड़ियां झड़ जाएंगी एकदम, लेकिन कोई एक पंखड़ी दूसरे के आधार पर नहीं रहेगी, बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा वो हुआ। ऐसे ही अंत समय में के लिए बाबा अभी हम बच्चों को गुलाब के फूल की तरह तैयार कर रहा है, बस बुलावा आवे और हम बिल्कुल, हम सबका कनेक्शन सीधा एक बाबा के साथ ही हो, जो भी आसपास है, शरीर है, संबंध है, पदार्थ है, कुछ भी है, किसी से भी हमारा कोई मानसिक संबंध बिल्कुल न हो, तो बस जरा भी बुलावा आवे हम एकदम पंखड़ी की तरह झड़ के एकदम ये देह त्याग करके हाँ बाबा अब आपके पास आ रहे हैं, चल रहे हैं, बाबा हम आए कि आए। ये वास्तव में है इच्छा मृत्यु, जो भीष्म पितामह को भी वरदान था ना कि इच्छा मृत्यु, हम देह भी त्याग करें लेकिन अपनी इच्छा से देह त्याग करेंगे तो नेचुरली अंत मते सो गति हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपनी इच्छा से करेंगे हम देख लेंगे कि हाँ अब मेरा इस समय कभी भी मेरी बुद्धि में नहीं है, कहीं पर भी मेरी बुद्धि अटकी हुई नहीं है, और उस समय जब अपनी इच्छा से ये होगा तो नेचुरली अंत मते सो गति हो जाएगी। लौकिक दुनिया में भी कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं बस इतना समय रह गया है, ऐसे ये कभी भी जा सकते हैं, फिर भी वो व्यक्ति कई बार देखते हैं थोड़ा शरीर में आत्मा रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही है, जहां भी उसका ममत्व होता है, मोह होता है, और जैसे ही वो व्यक्ति आया बस देखा एकदम आत्मा देह त्याग। कितनी बार हमने भी देखा है, आप सबका भी अनुभव होगा, सुना होगा, जहां पर भी बुद्धि लगी होती है तब तक देह त्याग जैसे करना बहुत कठिन होता है, प्राण अटके रहते हैं जो कहा जाता है, तो हमें यही देखना है अंत में कहीं पर भी प्राण अटके न रहें, और इच्छा से हम छोड़ेंगे तो बस, और उसके लिए यह खुशी खुशी, कोई भी वर्तमान समय कलयुग में तो सबसे बड़ा भय होता ही मृत्यु का है, भय रहता है व्यक्ति को, लेकिन ये भी मालूम है कि जाना है, हमेशा इस शरीर में नहीं रहना है, फिर भी जितनी भी आयु हो जाती है और रहें और जिए, छोड़ने में भी व्यक्ति को भय लगता है। तो इसमें क्या है, अगर भय की स्थिति अंत में रही कुछ भी तो वही संस्कार अगर लेके गए आगे फिर हमारी गति तो होगी नहीं, उसी अनुसार जन्म हो जाएगा, उसी अनुसार हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। इसलिए बस ये अभी देखते चलना है कि अंत में हमारी स्थिति भय की न हो बल्कि बहुत खुशी की रहे, जो बाबा हमेशा ये कह रहे हैं हर हाल में संतुष्ट, इतना खुश रहे और उस खुशी की स्थिति में अगर शरीर छोड़ा अंत मते सो गति, पक्की निश्चिती है। इसीलिए बाबा बार बार, कितनी बार परसों मुरली में कितनी बार बाबा ने खुश रहने के लिए हाथ खड़े करवाए, कम से कम भी 10 से ज्यादा बार हमने देखा उसे, इतनी बार बाबा ने बार बार हाथ खड़ा करवाया। खुश रहना है, खुश करना है, क्यों? ये अंत समय का सूचक है कि अंत समय, अभी से ही अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो जो अंत समय निकट है उस समय हमारी सदा 24 घंटे किस प्रकार से खुशी की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए बाबा ने कहा है अभी इस हाल में रहना, और बाबा का हमें ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मौका मिला तो बाबा भी कैसे अपने को विपरीत परिस्थिति में भी कैसे खुश कर लेता था। जो बाबा ने कहा है, देखो बड़े से बड़े वैसे कई पेपर हैं जो बाबा ने कहा है सबके सामने आते हैं, लेकिन दो पेपर सबके सामने जो आने हैं अंत समय तक, कौन से दो पेपर? एक है शरीर का पेपर, दूसरा है परिवार का पेपर, फैमिली, जो डिवाइन फैमिली है। तो ये पेपर आने हैं, तो शरीर का पेपर, जैसे बाबा की भी इतनी बड़ी 93 आयु थी, हम लोग देखते थे बाबा के साथ हमें रहने का लगभग 6-7 वर्ष सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो हम लोग देखते थे बाबा को कई बार खांसी आती थी, बाबा कहते थे हंसी में, देखो ये मेरी कौन है, सखी है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं शिव बाबा को बोलता हूँ बाबा मुझे मेरी ये सखी से छुड़ाओ, तो शिव बाबा क्या बोलते हैं? शिव बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, ये तो तुम्हें भुगतना ही है, जो कर्म किए हैं भोगने हैं, इसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से जब ब्रह्मा बाबा को भी कोई कंसेशन नहीं अपने कर्मों के हिसाब किताब का, तो आपको या हमें कुछ होगा? किसी को भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी हिसाब किताब शरीर का आए उसे खुशी से चुकतू करते रहे। ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, हम देखते थे कई बार बाबा को बहुत खांसी आती थी, मुरली भी चला रहे हैं तो हम लोगों को, देखने वालों को लगता था अरे बाबा को तो कष्ट हो रहा होगा, कभी कभी आंखें भी जैसे गीली हो जाते थे, लेकिन बाबा को जैसे ना बस हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि परिस्थिति को बदल दे, जो बाबा कहता है बस बाबा को ये आती थी। और बाबा हिस्ट्री हॉल में, हाँ मधुबन में आपने चार धाम के चक्कर लगाए होंगे ना, हिस्ट्री हॉल में बाबा क्लास कराते थे, तो बाबा के बगल में ही पास में ट्रांसलाइट का चित्र कृष्ण का रखा रहता था, लक्ष्मी नारायण का होता था, तो बस बाबा कहते थे देखो बच्चे अभी तो ये पुराना शरीर है, हिसाब किताब है, बाबा को चुकतू करना पड़ता है, कर रहे हैं, लेकिन कल बाबा जाके देखो ऐसा कृष्ण बनेंगे, विष्णु बनेंगे, उस दुनिया में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई खांसी नहीं होगी, कितनी भव्य दुनिया। बस बाबा जैसे उस दुख की अशांत परिस्थिति को ये बोल करके बिल्कुल जैसे परिवर्तन कर देते थे, और बच्चों को भी बड़ी खुशी में रहना चाहिए, कभी भी कोई बात आए बस उसको खुशी में परिवर्तित कर दो बच्चे, और बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा पूछते थे कई बार बच्चे जानते हो खग्गियां कैसे मारते हैं, ये सिंधी शब्द है, ज्यादातर को मालूम नहीं होता था, तो बाबा ने बताया, एक बार हमने भी देखा सामने बैठे हुए थे क्लास में, बाबा ने कहा बच्चे मालूम है देखो ऐसे हो खुशी में हो, कल जाके मैं ये बनूंगा, ऐसा कृष्ण बनूंगा। इतना एजेड बाबा लेकिन चेहरे से इतना खुशी, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इतनी दिव्यता, कल बाबा जाके ऐसा कर गया बिल्कुल। तो ऐसा वातावरण ही जो थोड़ी देर पहले खांसी का था, या बाबा को या दूसरों को भी देखने से ऐसा लगता था, वो बिल्कुल वातावरण खुशी में आनंद में परिवर्तित हो जाता था। बस बाबा अब हम बच्चों से यही चाहता है कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उसे हम खुशी की स्थिति में परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियां आएंगी, चारों तरफ जब हाहाकार होगा, दुख होगा, अशांति होगी। बाबा ने कहा है ऐसे दुख में डूबी हुई आत्माएं आपके पास आएंगी, लेकिन आपका स्वरूप ऐसा हो, आपकी अंदर की स्थिति भी ऐसी हो और चेहरा भी ऐसा हो जो दुख में डूबी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति करती हुई चली जाए। तो ऐसे परिवर्तन करने की हमारे अंदर क्षमता हो, जो बाबा ने परसों भी मुरली में बोला ना, ऐसा हो वातावरण, ऐसा हो हमारा हो, सेंटर का वातावरण, घर का, कि बस लोग आए देखें क्या समझे, ये आत्माओं को जरूर कुछ ऐसी प्राप्ति है, खुशी का वातावरण हो चारों तरफ, सुख का वातावरण हो, वाइब्रेशंस हो, तो ये रूप बदलने की क्षमता जितनी हम में होगी, और बाबा में तो प्रत्यक्ष देखने में आती थी, बाबा ही तो हमारा रोल मॉडल है। बाबा कहता है एक ही आत्मा है जो अभी तक संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पा करके फरिश्ता बनी है, और दिव्य जो बाबा ने हमारा लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को उसने प्राप्त किया है। तो इसीलिए हम सब ब्रह्मचारी तो बन गए, पवित्र बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है जो बाबा ने वास्तव में प्राप्त की। नहीं तो बाबा भी तो साधारण था, हीरे जवाहरात का व्यापारी था बाबा, परिवार वाला था, पुत्र पुत्रियों वाला, बहू पुत्र वधुओं और सबके सब थे, पूरा भरा पूरा परिवार, धंधा करते थे। लेकिन उस स्थिति में होते हुए भी बाबा सिर्फ 33 वर्ष में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया, सिर्फ 33 वर्ष। देखो आज औरों की तो बात दूसरी, हमें ही 50 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन बाबा ने उल्टी सीढ़ी चढ़ा हुआ जो बोलते हैं दादा लेखराज, लेकिन जब से ब्रह्मा बाबा बना, जिस दिन से बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उस दिन से ही बस 33 वर्ष के अंदर बाबा संपूर्ण बन गए। एक तो ये देखना है अपने को, हम एक एक ये चेक करते चले, शरीर का पेपर आएगा, लेकिन अंतिम दिन भी 18 जनवरी को हम बाबा के सामने ही बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे, 18 जनवरी की रात को जो बाबा अंतिम मुरली चला रहे थे, लेकिन जो बाबा ने कहा ना, बाबा ने मुरली चलाई, उस दिन सुबह भी तबीयत ठीक नहीं थी, एक दो दिन पहले भी काफी खांसी सब थी, लेकिन जब आत्मा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो क्या होता है कि शरीर के कर्म भोगों के ऊपर जो योग बल है वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो उस दिन बाबा को 18 जनवरी की आप मुरली सुनो, वो कैसेट भी मिलती है, सीडी मिलती है पूरा वहां पर, तो पूरी मुरली सुनो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इतना फ्लो में बाबा की वो मुरली चली है 18 जनवरी की 1969 की। तो उससे साफ जाहिर है कि जब हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर के जो रोग हैं, भोग हैं, उन सब के ऊपर योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, फिर शरीर को जैसे कोई भी व्याधि का अनुभव नहीं होता, डिटैचमेंट शरीर से भी और न्यारी अवस्था। बाबा को बड़ा इसमें परफेक्टनेस, जैसे हम देखते थे शरीर से अलग, बाबा कहते हैं देखो साइंस हमारी रचना है, साइंस में भी जब वो शक्ति है शरीर के किसी भाग पर लगा दो या इंजेक्शन दे दो, एनेस्थीसिया होता है ना, तो लोकल एनेस्थीसिया, तो वो शरीर का भाग से जैसे सुन जैसा हो जाता है, वहां ऑपरेशन करो, काटो, खून निकले, लेकिन कुछ भी आत्मा को उसके दुख की अनुभूति नहीं होती। तो विज्ञान हमारी रचना है, जब उसमें इतनी शक्ति है तो मैं आत्मा जो रचयिता हूं उसे भी ऐसा अभ्यास हो, जब चाहे हम शरीर से डिटैच हो जाएं जब चाहे हम शरीर में आके अनुभव करें। ये बाबा का बहुत परफेक्ट प्रैक्टिस थी। हम देखते थे बाबा से पार्टी मिलने जाती थी, टीचर जाती थी बहन लेके, बाबा अपनी झोपड़ी में बैठे हैं या अपने कमरे में, जहां पर भी बाबा मिलना होता था, बस आंख भी खुली है बिल्कुल बाबा, लेकिन जैसे शिव बाबा के साथ रूहान कर रहा है, जो बाबा ने पांच स्थान बताए हुए हैं, पांच स्वरूप बताए हुए हैं, उन सब में बाबा ऐसा स्थित होता था, कोई ध्यान नहीं होता था, कोई साक्षात्कार की बात नहीं, लेकिन मानसिक स्थिति बाबा की इतनी ऊंची, टीचर आ भी जाती थी, सामने भी खड़ी हो जाती थी कई बार, बाबा बाबा जब कहते थे तो जैसे बाबा ऊपर से जैसे नीचे, हाँ अच्छा बच्ची आ गए, आओ पार्टी लेके आए, आओ बैठो, फिर सब लोग बैठते थे, बाबा सबसे मिलते थे, टोली खिलाते थे, रूहान करते थे, एक पार्टी जाती थी दूसरी आती थी। तो ये शरीर में से डिटैच होने का अभ्यास, शरीर में आने का अभ्यास, ये जितना हमारा पक्का होता जाएगा उतना उतना ये अंत मते सो गते, अंत में अगर कुछ बचे हुए कर्म भोग होंगे भी शरीर के, बस अगर हम शरीर से डिटैच होंगे वो कर्म भोग का दुख का एहसास ही नहीं होगा, बस फिर तो बड़े सुख से खुशी से आनंद से शरीर छोड़ के चले जाएंगे। एक ये अभ्यास की जरूरत है जो बाबा से एकदम साथ में दिखता था। और साथ ही साथ दूसरा कौन सा बाबा ने बताया, एक शरीर का पेपर, दूसरा परिवार का पेपर। क्योंकि जब कभी हम किसी परिवार के वाले की कोई बात देखते हैं, कोई थोड़ा मर्यादा उतनी नहीं है या कुछ ऐसी बात है जो हमें ठीक नहीं लगती है, तो बस हमारे मन में संकल्प चलते हैं, समय वेस्ट होता है, संकल्प वेस्ट होते हैं, अरे ये अपना 20 साल पुराने इसमें भी ऐसी बात, ये 25 साल के पुराने इनमें भी ये कमजोरी ये देखने में आ रही है। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बाबा ने कहा कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, किसी को भी देखो तीनों कालों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, फिर हमें कभी भी उसकी कमी कमजोरी का एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक एक बच्चा मेरा चुना हुआ रतन है, मैंने एक एक बच्चे को चुना है, मेरा जो आखिरी में आखिरी बच्चा भी जो है वो आज का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी है, बड़े से बड़ा उससे भी महान है, वो साधारण बच्चा नहीं है। तो जब भगवान ने हमें चुना है, एक एक परिवार के बच्चे को भगवान ने चुना है, तो भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे देखने की हमारी नजर ही में कुछ दोष है, तभी ही वो दोष हमें दूसरा नजर आ रहा है उस व्यक्ति में, लेकिन हम ये समझें ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। हाँ कोई नाटक होता है ना, फिल्म होती है, सबका पार्ट एक जैसा तो होता नहीं, कभी विलेन का पार्ट होगा, कभी हीरो का होगा। तो अलग अलग पार्ट समय पर होते हैं, उसमें कभी थोड़ी संकल्प आता है ऐसा क्यों नहीं, जैसा जिसका पार्ट है उस अनुसार वो चल रहा है। लेकिन अगर हम तीनों कालों की दृष्टि से देख रहे होंगे तो वो जो आत्मा है उसका अंत में भी सब कमजोरियों से वो दूर होकर के वही डबल ताजधारी महाराजा महारानी, उसका वो पार्ट सबके सामने प्रत्यक्ष होगा। ऐसे ही वो आत्मा पहले भी उसी रूप में थी, वर्तमान समय उस रूप से पास हो रही है, लेकिन बाबा को उसके द्वारा जरूर कुछ न कुछ विशेष प्रत्यक्षता करानी है, इसलिए भगवान ने चुना है। मुझे ऐसे वक्त एक वो शायर की भी एक बात याद आ गई, हम सब वही भूल करते हैं जो इसने दो लाइन में कही है कि जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। जो आईना होता है ना, कमी हमारे में होती है, लेकिन हम समझते हैं आईना यानी दूसरे में कोई दोष है, उसका दोष देखते रहते हैं, उसकी दृष्टि हम अपना दृष्टि दोष नहीं समझते, और इस कारण से हम उस कमी के भंडार बनते चले जाते हैं, दूसरा वो कमी को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक आवश्यकता ये है हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की, अपने अंदर देखने की। तो इसलिए बाबा ने कहा है, कोई भी बात किसी की देखो, जो भी महान आत्माएं हैं उन सब महान आत्माओं में एक गुण विशेष होता है। आप देख लो, महावीर हैं, गौतम बुद्ध हैं, कोई मदर टेरेसा, या मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ भी रहने का मौका मिला, हमारी दादियां हैं, हर एक में एक गुण विशेष देखने को मिलता है। कौन सा गुण? हम सब बच्चे हैं, नंबरवार हैं, बहुत कमी है, कमजोरियां भी हैं, लेकिन सब देखते हुए जानते हुए भी क्षमा का गुण, ये क्षमा का गुण जो होता है, ये महान आत्माओं का विशेष लक्षण है। हम सब भी तो महान आत्माएं हैं, तो इसलिए हम आत्माओं में भी ये गुण विशेष होना चाहिए, क्षमा का गुण। दूसरे को हम देखते रहते हैं, कोई बात होती है, हम उस बात को भूल नहीं पाते, इसलिए वो बात हमें कचोटती रहती है। अगर हम उस बात को भूल जाए, क्षमा कर दें किसी को, बस उससे सबसे बड़ा लाभ तो हमें खुद ही है। क्या है? क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। जो महावीर है, महारथी है, वो क्षमा कर देगा। तो आज हम बैठ के ये इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांक करके देखें कि जितने भी हमारे संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, जब उसकी याद आती है या वो सामने आता है व्यक्ति, उसको देख करके मुझे क्या पुरानी स्मृतियां, दुख की, अशांति की, वो ताजा हो जाती हैं? अगर वो पुरानी बात याद आ जाती है, इसका मतलब मैंने उस आत्मा को क्षमा नहीं किया है, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान मुझे खुद ही है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा में तो अगर वो कमजोरी है, वो देखे, वो खुद निकालने की पुरुषार्थी है, लेकिन मैंने अगर उसे क्षमा नहीं किया तो वो कमजोरी मेरे अंदर गहरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और वो मुझे संपूर्ण बनने में बाधक होगी। इसलिए एक ये अंत में, नहीं तो अक्सर दो व्यक्ति खास याद आते हैं, दो प्रकार के, या तो जिससे बहुत स्नेह होता है, बहुत प्यार होता है, वो व्यक्ति याद आएगा, या जिससे कुछ दुश्मनी है, जिसके प्रति हमारे मन में घृणा है, ईर्ष्या है, कोई भी है, वो व्यक्ति याद आएगा। दोनों ही खतरनाक है, क्योंकि अंत में कोई भी अगर याद आए, अंत मते सो गति हो जाएगी, उस व्यक्ति के यहाँ जन्म लेके और फिर से हमें हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। बहुत सारा का सारा जीवन भर का पुरुषार्थ जैसे कि माइनस में चला जाएगा। इसलिए ये भूलना अंत मते सो गति के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है, हर व्यक्ति जब पैदा होता है ना, उसमें दो शक्तियां विशेष होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। हम सभी के अंदर ये दो शक्तियां हैं, लेकिन विडंबना क्या है जीवन की, कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो जाते हैं भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। ये हमारे जीवन की विडंबना है। तो इसीलिए आज आवश्यकता ये है कि सही बात को कैसे याद रखा जाए, किस बात को भूला जाए, उस बात को सही रीति से याद रखने की। इसीलिए बाबा कहता है, दो शब्द भी हमेशा याद रखो। कौन से दो शब्द? एक है अपेक्षा, एक है उपेक्षा। अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन, हमारी अपने जिनसे हम निकट समझते हैं काम करना होता है उनके प्रति एक्सपेक्टेशन होती है वो ऐसा करे, बाप की बेटे से, बेटे की बाप से, सास की बहू से, बहू की सास से, भाई भाई की, कहीं भी एक्सपेक्टेशन होती है। और आज के संसार में सभी अपेक्षाएं पूरी होनी संभव नहीं है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए यदि हम अंत मते सोगते पूरा सफल करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति से रहना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए? खुश। जो बाबा ने कहा खुशी, खुशी गायब कब होती है? हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती, खुशी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इस संसार में हम कम से कम एक्सपेक्टेशन रखें, कम से कम अपेक्षाएं रखें व्यक्तियों से, चाहे जितना भी निकट का व्यक्ति हो, एक्सपेक्टेशन हमारी कम से कम होंगी, हम सदा खुश रहेंगे और अंत समय में भी यही सिद्धांत काम आना है। एक अपेक्षा और दूसरी है उपेक्षा। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं, कोई बात होती है हम अक्सर करके उसे अवॉइड करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, तो ये अपेक्षा और उपेक्षा ये दोनों ही, क्योंकि हम अगर अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और हम जिस व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं उससे उसे दुख होता है। तो बाबा ने कहा न दुख लो न दुख दो। तो इसीलिए किसी को भी दुख का एहसास हमारे कारण न हो उसके लिए है कि किसी की भी हम उपेक्षा न करें, अवॉइड न करें, और हम किसी से दुख न लें उसके लिए है हम कोई एक्सपेक्टेशन न रखें, और उसके लिए अपेक्षा हमारी जीवन में कम से कम हो, हमारी खुशियां हमेशा ही कायम रहेंगी। इसीलिए अंत समय में देखो, मैं बताता हूँ लास्ट की बात है, बाबा ने कैसे, जब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं ना कंप्लीट, बिल्कुल उसके निकट होते हैं, एक लक्षण विशेष देखने में आता है जो बाबा पिछले 3-4 वर्षों से मुरली में हम सबके लिए कह रहे हैं। कौन सी बात? मन के लिए, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए कहा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर साफ है अच्छा है तो सब हासिल है। गीता में भी इसलिए कहा है क्या, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो ये मन इसको कैसे जीते और इसके लक्षण क्या है कि हमने मन को जीत लिया, ये ब्रह्मा बाबा में साफ स्पष्ट दिखता था। बाबा ने भी 1936 में जब ज्ञान में आए, देखा स्वाभाविक है मन भाग जाता है, मन लगाते हैं शिव बाबा में लेकिन मन भाग जाता है, कभी कहीं पत्नी की तरफ, कभी बच्चों की तरफ, कभी व्यापार की तरफ, अलग अलग जगह। तो बाबा ने क्या किया, दो बातें की जो दो डायरियां यहां थी। एक तो बाबा ने ये पक्का किया, लिख लिख करके जहां मन जाता था कि वो शरीर नहीं आत्मा है, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, नारायण बाबा के लड़के का नाम, निर्मल शांता दादी जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही शरीर छोड़ा, लड़की का नाम आदि आदि। तो बाबा ने लिख 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 करके इतना पक्का किया कि बस बाबा जब जिससे भी मिलता था, जब हम लोग शुरू में बाबा से मिलते थे, बाबा आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, आओ प्यारे बच्चे, बस ऐसा बाबा भ्रकुटी में देखता था और बस हाथ फैला देता था, हम सब चुंबक की तरह खिंचके बाबा की बाह में चले जाते थे। और अंतिम एक दो वर्ष में जब बाबा ऐसे गोद नहीं, डॉक्टरों के और सबके अनुसार कि भाई इन्फेक्शन वगैरह होने की गुंजाइश होती है, बाबा दृष्टि दी और जैसे ही बाबा दृष्टि देता था हम सब विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। और ये वो ही कर सकता है जिसका अपना आत्मिक स्वरूप का अभ्यास जितना पक्का होगा वो दूसरे को भी कुछ क्षणों के लिए विदेही बना देगा। ये बाबा का प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। और दूसरा, बाबा ने मन को लेटर लिखा। जब बाबा ने देखा मन बार बार भाग रहा है, सब तरफ भाग रहा है, तो बाबा ने मन को लेटर लिखा। क्या लिखा? गौर से सुनना। हम सब भी कहते हैं क्या करें, हम चाहते हैं मन भागे ना, लेकिन मन बड़ा चंचल है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है, भाग जाता है। अगर हमने भी कहा और कह के छोड़ दिया तो दुनिया में और हम में फर्क क्या हुआ? बाबा ने उसका हल निकाला। क्या निकाला? मन को पत्र लिखा। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया, मुझे कमजोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया, और तू जिधर जिधर भागता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, जो तू जैसा चलाता रहा मुझे मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना है। बाबा ने ऑर्डर किया, लेकिन कब? कब मन ने ऑर्डर माना? पहले भी भक्ति मार्ग में मन भागता था, लेकिन बाबा ने जब ऑर्डर किया पहले स्वमान में स्थित होकर के, अब मैं आत्मा राजा अपने स्वमान में स्थित हो गया, मैं तुझे ऑर्डर करता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। हम भी चाहते तो हैं, लेकिन मन भाग जाता है। कभी हम कोई शक्ति का आह्वान करते हैं, समाने की शक्ति का, मानो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, समाने की शक्ति का आह्वान किया, शक्ति आती नहीं, संकल्प चलते रहते हैं। सहन शक्ति का आह्वान किया, हम महसूस करते हैं कि वो नहीं आई। क्यों? क्योंकि हम बिना स्वमान में स्थित हुए उसे ऑर्डर करते हैं। लौकिक में भी कोई बड़े से बड़ा भी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, अगर अपनी सीट पर नहीं है, कोई बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, ट्रांसफर हो गया, अपनी सीट पर नहीं है, तो कोई उसका ऑर्डर मानेगा? जब वो सीट पर सेट होता है तब सब उसका ऑर्डर मानते हैं। इसीलिए हम अगर कोई चाहते हैं कोई गुण शक्ति, वो हमारे आह्वान करने पर तुरंत हमारी सेवा में हाजिर हो जाए, वो तब होगा जब पहले मैं, जो बाबा ने इतने सारे सम्मान दिए हैं, बाबा मैं आपकी मस्तक नड़ी हूं, मैं आपकी दिल तक नशीन आत्मा हूं, बाबा हम आपके नयनों का नूर हैं, मैं वही कल्प पहले वाली सर्वशक्तिवान आत्मा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये सब शक्तियां मेरे वश की हैं। अपने को हम सम्मान में स्थित करके उसके बाद कोई पर्टिकुलर शक्ति या गुण का आवाहन करेंगे, आप देखो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी आएगी और जो हम चाहते हैं बिल्कुल उस स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। बाबा ने यही किया और इससे क्या हुआ कि बस वो मन, फिर उसके बाद बाबा ने कभी महसूस नहीं किया कि मन जो है भाग जाता है, बदल जाता है। इसी को ही बाबा कहता है, जब मन ऐसी स्थिति में, उसी को ही होली हंस बोलते हैं। हंस सफेद होता है, कितना निरशीर विवेक करता है, हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर का अलग कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी क्या है हंस की? हंस ही एक प्राणी है जो पृथ्वी पर भी, जल में भी और आकाश में भी उड़ सकता है, पृथ्वी पर भी चल सकता है, जल में भी तैर सकता है, आकाश में भी उड़ सकता है, और कोई ऐसे प्राणी नहीं। तो ऐसे ही हम भी जितना जितना होली हंस बनते जाएंगे, तो हर परिस्थिति में, चाहे जल थल नभ कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करते जाएंगे। ये जब हम हर सेकंड तैयार होंगे ना, कोई पेपर आता है कभी भी आ सकता है, हिरण्यकश्यप का भी सुना है ना, प्रहलाद का, उसने यही वरदान लिया था, ना कोई अंदर मरू ना बाहर, ना दिन ना रात आदि आदि। तो ऐसे परिस्थिति कह के तो आएगी नहीं कि अब हमारे प्राण निकलने का समय है, कोई भी परिस्थिति में हम तैयार रहें, और ये तभी जैसे होली हंस हर परिस्थिति में वो चल सकता है। ऐसे ही जितना हम ये बनते चलेंगे उतना उतना हम और आगे बढ़ते चलेंगे। और बाबा को क्या, ये जो बाबा की साकार बाबा की बात बता रहे हैं ना, ये इसीलिए कि बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है। 18 जनवरी की रात को बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा हिस्ट्री हॉल से बाहर गए, और बाहर जाके बस बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहा, अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग या गुड नाइट हमेशा। लेकिन उसी दिन ही बाबा ने पहली और आखिरी बार ये बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये इसी बात का सूचक है जैसे इच्छा मात्रम अविद्या या इच्छा मृत्यु का। बाबा को जैसे आभास हो गया था हाँ अब मेरे सारे हिसाब किताब इस शरीर से चुकतू हो गए, मैं जा रहा हूँ, इसलिए बाबा ने बच्चों से छुट्टी ली, विदा ली, कमरे में गए, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदा ले ली। लेकिन साथ में जो बाबा अभी हम बच्चों से चाहता है और जो बाबा का प्रत्यक्ष रूप देखा वो क्या कि 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, 19 को सारा दिन शरीर रखा रहा, 19 की रात रखा रहा, 20 का दिन 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद 2 बजे बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई भी बिल्कुल वैसा ही सफेद श्वेत रंग, बिल्कुल काला नहीं पड़ा। नहीं तो अक्सर जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है काला पड़ जाता है शरीर स्टिफ हो जाता है, हड्डियां अकड़ जाती हैं। हमने तो देखा, स्नान कराया, सब थे, बाबा का शरीर में वैसी ही बस काफी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल कोई दुर्गंध नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा का शरीर था। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, जो बाबा चाहता है ये प्रकृति 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, आत्मा इतनी पावन हो जाए कि बस ये 5 तत्वों से बना शरीर भी हमारा अंत में पूरा का पूरा सहयोग दे। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक जो बाबा के प्रत्यक्ष वो देखने को मिला। अब बाबा यही हम बच्चों से चाहता है, हम सब बच्चे भी प्रकृति जीत बने। और प्रकृति में तो ये सब 5 तत्व आते ही हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, इन तत्वों से बना शरीर है हमारा। तो ये शरीर भी अंत समय भी बिल्कुल हमारा साथ दे, आत्मा शरीर से जाए भी लेकिन इस कारण से ना जाए, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, बीमारी के कारण, किसी और परिस्थिति के कारण नहीं, हम जैसे अपनी इच्छा से, जैसे साकार बाबा अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के गए, हम अपनी इच्छा से इस शरीर का त्याग करके जाएं तो प्रकृति जीत। वो कैसे होगा? बड़ा सहज, बाबा ने एक एक तत्व को उस पर विजय पाने के लक्षण बताए कि अंत में बस भूचाल आया मानो, बहुत पृथ्वी हिली, मकान गिर रहे हैं, सारा चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण न बने, दुख का कारण न बने। कब होगा? जब पृथ्वी के साथ हमने इस तत्व के साथ मित्रता की होगी, और मित्र मित्र की रक्षा करता है, प्राण नहीं लेता। तो इसीलिए पृथ्वी का सबसे मुख्य गुण क्या है, कौन सा है? पृथ्वी का गुण है दातापन का। एक बीज बो दो, पेड़ निकल आएगा, बहुत हजारों फल पैदा हो जाएंगे, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे एक से। पृथ्वी से जल, पूरा मिनरल्स, मेटल, पेट्रोल, तेल, सारे वनस्पतियां, फल, गेहूं, अनाज, सब कुछ चीज पृथ्वी से मिलता है, पृथ्वी दाता है। ऐसे ही बाबा कहता है आप बच्चे भी मास्टर दाता बनो। कोई स्थूल देने की बात नहीं है, आपके पास कोई भी आए खाली हाथ न जाए, बस सुख शांति शुभ भावना शुभकामना प्रेम स्नेह आदर सत्कार, हर एक चीज की, हमारा चेहरा ही ये सब चीज का दान करता रहे। जो बाबा ने परसों भी बोला, आपका चेहरा ही ऐसा हो जाए। ये तब होगा जब हमने अंदर अपने अंदर दातापन की स्मृति रहेगी, हमेशा देते ही रहें, कोई खाली हाथ हमारे से न जाए। इन चीजों में खर्चा तो होता नहीं, कोई स्थूल, तो दातापन की स्मृति रहेगी तो पृथ्वी कभी भी हमारे मृत्यु का कारण, दुख रोग अशांत इसका कारण नहीं बनेगी, चाहे जितने अर्थक्वेक आएंगे। इसी तरह जल, जल का सबसे बड़ा गुण क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। जल हर जगह अपने को एडजस्ट कर लेता है। देखो अभी ये गिलास है, इस गिलास में जल ने एडजस्ट कर रखा है। यही जल को कटोरी में लोगे, कटोरी में सेट हो जाएगा। यही जल थाली में लोगे, थाली में सेट। क्यों? इसमें एडजस्टमेंट पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी कोई संस्कार इतने कड़े न हो, एडजस्टमेंट की शक्ति हो, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हरेक से हम अपने को मिलकर के चला सके। ये न कहें कि भाई इनके साथ तो बड़ा मुश्किल है चलना, इनके साथ बड़ा आसान है, चल सकते हैं, इनके साथ नहीं चल सकते। नहीं, हर आत्मा के साथ मिलजुल के स्नेह प्यार के साथ हम एडजस्ट होंगे, जितने चलते रहेंगे तो इसका मतलब जल का गुण हमने धारण कर लिया। और फिर ये जल जितनी भी सुनामी हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, ये हमारी मृत्यु का या दुख का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जल को हमने अपना मित्र बना लिया। मित्र तो सदा रक्षा ही करेगा ना। ऐसे वायु का क्या लक्षण है? हरेक के लक्षण तो बहुत हैं, आठ आठ दस दस गुण है, लेकिन मैं सिर्फ एक बता रहा हूं आपको। वायु का क्या लक्षण है? हल्का रहने का। पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उड़ा के ले जाती है। ऐसे ही हम भी हर परिस्थिति में, कोई परीक्षा हो, कोई परिस्थिति हो, कभी भारी ना हो। जैसे दादी जी आज सुबह भी क्लास में बता रहे थे ना, और आज की मुरली भी जैसे थी ना, मूड, कभी भी कोई मूड ऐसा ना हो, कभी भी कोई आज हमें किसी से बात करने की दिल नहीं है, ये है। भारी जब मन हो जाता है, हम बस बिल्कुल ही अलग रहना चाहते हैं, भारी ना हो। हर परिस्थिति में हल्के रहेंगे, और जितना हल्के रहेंगे उतना उड़ते रहेंगे। गीत भी है ना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। तो कोई भी बात आए, हम भारी ना हो। बात आई है, चली जाएगी, नियम है प्रकृति का। परिस्थिति आई है, आज है, कल बदल जाएगी, लेकिन हमें भारी करके ना जाए, हल्के। तो यह है वायु का गुण। तो अंत समय में जितने भी साइक्लोन आएंगे, चाहे समुद्री तूफान आए, चाहे हवा भी 150, 200, 250 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, बहुत विनाश का कारण बनेगी, लेकिन ये वायु हमारे मृत्यु और दुख का कारण न बने। क्योंकि अगर वो ये तत्व हमारी मृत्यु का कारण बन गए, तो फिर अंतमते सो गते तो होगा नहीं। इसलिए ये कोई भी तत्व हमारी मृत्यु का कारण कभी नहीं बनेंगे। अगर तत्वों के एक एक गुण को हम देखेंगे, यहाँ तो एक बता रहे हैं, आप सब देखना, हरेक तत्व में आठ दस कम से कम ऐसे गुण हैं, उनको धारण करते चलेंगे। आकाश का क्या गुण है बड़ा? आकाश विशाल है। आकाश में ही कम्युनिकेशन होता है। आज हम मोबाइल से एक दूसरे से बात करते हैं, टीवी का दूर का दृश्य देख लिया, रेडियो से दूर के समाचार सुन लिए। क्यों? क्योंकि आकाश में ऐसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं विज्ञान ने, कि उसके द्वारा बस यहाँ से किरणें भेजी जाती हैं, टावर से टावर रिसीव करता है, और उससे हम तुरंत ही एक दूसरे का दृश्य देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। ऐसे आकाश की तरह हमारा हृदय जितना विशाल होगा, उसका लक्षण क्या है? कि हमारा किसी भी आत्मा से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा। जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, उनसे तो हम बहुत बात करना चाहते हैं, उनके साथ समय गुजारना चाहते हैं, लेकिन जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं होते, उनसे हम थोड़ी कन्नी काटना चाहते हैं, उनके सामने भी नहीं आना चाहते, आते भी हैं तो जल्दी से जल्दी। कम्युनिकेशन, हमारी बोल चाल किसी के साथ भी ब्रेक डाउन ना हो। क्यों? क्योंकि हम विश्व महाराजन बन रहे हैं, चक्रवर्ती, महाराजा महारानी। और विश्व महाराजन माने विश्व की एक भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके साथ हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो, बोल चाल ना हो, संबंध में मधुरता ना हो। अगर उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा रहा, तो इसका मतलब हम में विश्व महाराजन बनने की क्षमता नहीं है। इसलिए पुराने जमाने में भी ना, जब कोई महाराजा कोई वो चक्रवर्ती महाराजा का टाइटल लेना चाहता था, तो क्या करता था? यज्ञ करते थे, यज्ञ अश्वमेघ, जो बाबा भी कहते हैं ना, हमारा इस यज्ञ का भी नाम ना बड़े लंबा चौड़ा है, रुद्र अविनाशी विश्व, ये जो यज्ञ है हमारा गीता ज्ञान यज्ञ अंत में आता है। तो अश्वमेघ इसका भाव ये है। और वो क्या करते थे, पहले यज्ञ करते थे, फिर एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, घोड़े के यहाँ तख्ती लगी हुई होती थी कि भाई ये फलाने राजा ने घोड़ा छोड़ा है, जो इनकी अधीनता स्वीकार कर ले वो इसे जाने दे, और जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है वो हमारे साथ युद्ध करे। घोड़े के पीछे भी एक सेना चलती रहती थी, और सामने वाला जो होता था वो अगर उसको चैलेंज करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। ऐसे हम सब भी होवनहार चक्रवर्ती महाराजा महारानी हैं, विश्व महाराजा महारानी जो बाबा कहता है। हमने भी ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा हुआ है, ये हमारा इतना बड़ा रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ जो है अश्वमेघ, तो ये मन रूपी घोड़ा जो छोड़ा हुआ है इसके पीछे भी हमारी सारी सेनाएं चल रही हैं, दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की, जितने हमारे गुण हैं शक्तियां हैं ये सारी सेना हमारे साथ है। सामने दुश्मन की माया की सेना, वो अगर सामने आती है, वो अगर युद्ध करती है, तो हमारी सेना उसके ऊपर विजय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इसी समय का ही है ये जो हमारा यज्ञ है, हम सब ने ये यज्ञ रचा हुआ है। हमें देखना है कि इस मन रूपी घोड़े पर दुश्मन की ये जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह निगेटिविटी है, ये सबका कोई वश ना हो जाए, ये हमारे मन रूपी घोड़े को पकड़ ना ले, मन को चंचल ना कर दे। तो इसीलिए ये देखते हुए चलना है। तो बस जितनी विशालता धारण करेंगे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते जाएंगे। और पांचवी चीज क्या रही, चार तत् पांचवा सूर्य अग्नि। बस अंत समय में बहुत वैज्ञानिक लोग भी मान रहे हैं, अभी बहुत टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है आदि आदि, तो बहुत गर्मी पड़ेगी। इतना तापमान बढ़ता जाएगा उसमें भी लोग झुलसेंगे मरेंगे। लेकिन अगर हमने इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, ज्वालामुखी योग करो। ज्वालामुखी इसकी भी एक कहानी है, एक हिमाचल में मंदिर है, उसका जो मूर्ति है उसके मुख से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है, इसीलिए इसका ज्वालामुखी नाम पड़ा। हम आत्माएं भी योग में इतनी तपी रहे, अग्नि में जो चीज डाली जाती है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अंत में आत्माएं आएंगी, बहुत इच्छाएं लेके आएंगी, कोई साक्षात्कार की इच्छा, कोई गणेश का भक्त होगा, गणेश का, हनुमान का, राम का, कृष्ण का, हम एक होंगे, लेकिन 10 भक्त हमारे सामने आए, 10 के इष्ट देव अलग अलग हैं, हमारे से उनको साक्षात्कार कैसे होगा। साक्षात्कार की चाबी सिर्फ शिव बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास भी नहीं थी। तो बाबा जो है हमारे इस तन के द्वारा विभिन्न आत्माओं को जैसी जो भावना लेके आया होगा वैसा साक्षात्कार कराएगा। देखो ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा थी, नारायण की आत्मा, सबको साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा से नारायण का या कृष्ण का होता था, स्वर्ग का होता था, रास करते थे, खेलते थे, ठीक। लेकिन आप सबने भी जीवन कहानी में पढ़ा होगा, एक सरदार जी आए, वो थोड़ा दुश्मनी रखते थे, छुरा लेकर के आए ये सोच के कि मैं बाबा को मार दूंगा। आए बहन, उन्हें बहन से कहा मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, बहन अंदर ले गई, बस उनसे बाबा के पास बैठा के, और बहन तो चली गई। और जब सरदार जी अकेले थे, उन्होंने अपना छुरा निकाला और बाबा पर वार करने ही जा रहा था, तो क्या साक्षात्कार हुआ, गुरु नानक देव जी का, क्योंकि उसके इष्ट देव गुरु नानक देव थे। और जैसे उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ, वो तो भौचक्का रह गया, उसकी आंख से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे, हे भगवान, हे गुरु जी, मैं क्या करने जा रहा था, आपकी हत्या करने जा रहा था, मैं बहुत पापी हूँ, नीच हूँ, कपटी हूँ, बहुत उसने पश्चाताप किया, रोने लगा, और छुरा रख के वहीं बाबा के चरणों में वो पश्चाताप करता हुआ, माफी मांगता हुआ वो चला गया। अब बाबा कोई गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने बाबा के द्वारा साक्षात्कार वही कराया जिसमें उसकी श्रद्धा थी। तो इसी तरह अनेक आत्माएं आएंगी, अलग अलग इष्ट देवों के, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों का साक्षात्कार करने की। हमारे द्वारा हम एक होंगे लेकिन उनको अलग अलग साक्षात्कार होंगे जिसकी वो इच्छा रख के आए होंगे। बस हमें तो अब अपना तन और ये मन इन दोनों को पवित्र रखना है जिससे बाबा हमारे द्वारा उन सब आत्माओं को आगे आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार करा सके और न केवल हम ही अंत मते सो गते बल्कि अनेक आत्माओं को भी अंत मते सो गते के अनुसार उनकी सदगति के रिस्पॉन्सिबल बन जाए। इसी के साथ ओम शांति ओम शांति।